हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। झलक ये सारी बातें सुन चुकी थी, वो कब से वहीं खड़ी सब कुछ देख और सुन रही थी। उसके दिल में कहीं ना कहीं एक अजीब सा सुकून और राहत थी कि आज उसे उसका भरा पूरा परिवार मिल गया है। पैसों की तंगी की वजह से झलक ने क्या क्या नहीं किया था, कभी डिलीवरी वालों का काम, कभी छोटे मोटे काम, तो कभी नाइट क्लब में खुद को बदसूरत बनाकर काम करना। उसने हर तरह की जिंदगी देखी थी, न जाने कितने ही संघर्ष, कितनी ही तकलीफें उसने झेली थीं। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा तजुर्बा लेकर आज वो लड़की वहां खड़ी थी, मजबूत, खामोश और अपने पूरे परिवार के बीच। लेकिन अब झलक के अंदर सीखने की और कुछ करने की जिज्ञासा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि बहुत ही कम समय में वो बिजनेस की डिटेल्स के साथ साथ कई तरह की लैंग्वेज भी सीख चुकी थी। फिलहाल जैसे ही झलक वहां आई, स्नेहा जी तुरंत बोले, अरे आ गई बेटा, चलो फटाफट से नाश्ता करो, देखो मैंने तुम लोगों के लिए क्या क्या बनाया है। वहीं तब तक अनामिका भी वहां आ चुकी थी। उसने आते ही स्नेहा जी को गले से लगा लिया और बोली, सच में आंटी जी, आपके हाथों में तो एकदम जादू है। आप जानती हैं, मेरा तो बाहर कुछ खाने का मन ही नहीं करता, मन करता है बस आपके हाथों का बना प्यारा सा स्वादिष्ट खाना ही खाते रहूं। ये सुनकर स्नेहा जी मुस्कुरा दी। दरअसल बाकी सब लोग तो नाश्ता कर चुके थे, लेकिन झलक और अनामिका काफी लेट सोकर उठी थीं, क्योंकि वे लोग रात में देर से आई थीं। इसी वजह से स्नेहा जी ने उनके लिए फटाफट इस वक्त नाश्ता लगा दिया था। अब झलक और अनामिका जैसे ही नाश्ता करने लगीं, दादाजी ने दोनों की ओर देखते हुए कहा, अच्छा ये तो बताओ, तुम लोगों की रात की पार्टी कैसी रही? उसके बारे में तो तुम लोगों ने कुछ डिस्कस ही नहीं किया। जैसे ही दादाजी ने पार्टी का जिक्र किया, अनामिका का अचानक खांसी आने लगी। वो जल्दी से पानी का ग्लास उठाकर पीने लगी। दादाजी के माथे पर तुरंत बल पड़ गए। पार्टी का नाम लेते ही इसे खांसी क्यों आने लगी, उन्होंने मन ही मन सोचा। तभी झलक हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, दादाजी क्या मस्त पार्टी थी, एकदम बिंदास। आप जानते हैं कितना ज्यादा मजा आया, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, अनामिका ने तो खूब जमकर डांस किया। ये सुनकर दादाजी को और भी शक होने लगा, झलक जो किसी से ठीक से बात तक नहीं करती, वो पार्टी में डांस करे, ये कैसे हो सकता है? वो झलक को थोड़ा टेढ़ी नजरों से देखने लगे। तभी दादाजी बोले, अच्छा झलक बेटा, क्या बात है, तुमने इतना ज्यादा एंजॉय किया, बोलो ना, जवाब दो। अब अनामिका को अंदर ही अंदर पसीना आने लगा। उसे डर लग रहा था कि कहीं झलक कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे सारी सच्चाई सामने आ जाए। अगर पार्टी में हुई बात सबको पता चल गई तो शायद उसे घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लग जाए। वो मन ही मन सोचने लगी, झलक से तो झूठ बोला नहीं जाएगा, लगता है आज तो मेरा आखिरी दिन है आज़ादी का। लेकिन तभी झलक ने अनामिका की मायूस सी हालत पर एक नज़र डाली, फिर बाकी सबकी सवालों से भरी आंखों को देखा और तुरंत बोली, हाँ पार्टी काफ़ी अच्छी थी, हमने एंजॉय किया। झलक ने बहुत ही सीधे और साधारण लहजे में बस यही बात कही। ये सुनते ही अनामिका का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो आगे बढ़कर झलक को झट से किस कर बैठी। दादाजी तुरंत बोले, अरे वाह क्या बात है, यही तो ये भी बता रही थी जो तुमने कहा, फिर तुम ऐसे अचानक इतनी खुश क्यों हो गई? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मुझे धमका कर कुछ और बुलवाया हो। ये सुनकर अनामिका जल्दी से बोली, अरे नहीं दादाजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे बस कल रात की इंजॉय वाली बातें याद आ गई, इसलिए मैं और खुश हो गई। फिर वो जल्दी से बोली, वैसे भी हम लोग अभी निकल रहे हैं। ये सुनकर दादाजी हैरान होते हुए बोले, अभी? लेकिन आज कहाँ जाने का इरादा है और दिन में कौन सी पार्टी है? अनामिका तुरंत जवाब देती है, हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, आज हमारा पूरा इरादा सारा दिन शॉपिंग करने का है। फिर उसने दादाजी को प्यार से समझाते हुए कहा, और देखिए दादाजी, आपने हमें एक हफ्ता दिया था जो अब लगभग खत्म होने वाला है, कुछ क्लासेस बची हैं, उसके बाद झलक पूरी तरह बिजनेस में घुस जाएगी और हो सकता है कि आप मुझे भी किसी न किसी काम में लगा ही दें, तो अभी जो थोड़े से दिन मिले हैं हमें बस चिल आउट करने दीजिए ना प्लीज। झलक ने बदले में अनामिका से कुछ नहीं कहा, वो बस उसे देखती रही, वैसे भी वो मना करके उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। फिलहाल अब दादाजी दोनों की ओर गौर से देखते जा रहे थे और बोले, भैया हम जानते हैं तुमसे तो बातों में कोई जीत ही नहीं सकता, ठीक है जहां जाना है जाओ, लेकिन अपना पूरा ध्यान रखना, ठीक है? ये बोलकर जैसे ही दादाजी ने कहा, अनामिका ने दादाजी को गले से लगाते हुए कहा था, थैंक यू दादाजी, मैं आपके लिए भी शॉपिंग करके आऊंगी, आपके लिए भी कुछ ना कुछ खरीदूंगी, और हाँ आंटी जी, आपने हमें कुछ खाने के लिए पैक करके दे देना, क्योंकि हम शॉपिंग करते करते जब तक जाएंगे तब तक हमें आपके हाथों का बना हुआ ही खाना खाना है। बेटा उन्हें क्यों परेशान कर रही हो, बाहर जा रहे हो तो वहीं पर कुछ खा लेना, तभी उन्होंने कहा था। इस पर आंटी जी बोले, अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो आप, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, मैं जरूर देती हूँ, और वैसे भी मैंने गाजर का हलवा बनाया है तो मैं फटाफट वहीं पैक कर देती हूँ। ये बोलकर वो किचन में चली गई थी। वहीं झलक ने अनामिका का हाथ पकड़कर कहा था, क्या तुम पक्का मॉल्स की तरफ ही चलना चाहती हो? तब अनामिका बोली, यार प्लीज झलक, अब तुम कुछ मत बोलना। मैं मुश्किल से सब लोगों को जाने के लिए मना पाई हूँ। तुम ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता? घूमने जाना है तो राज क्यों? इतने से दिन मिले हैं आज़ादी के, तुम मेरी फीलिंग्स कब समझोगी यार? पता है, बोर्डिंग स्कूल में डालने के बाद मैंने कभी बाहर की जिंदगी नहीं देखी, और उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी को एक ही मकसद दे दिया था, पापा को ढूंढना। अब पापा भी मिल चुके हैं, प्यारी सी, क्यूट सी, हाँ थोड़ी सी रूट भी, बहन भी मिल चुकी है, तो अब देखो मैं एंजॉय करना चाहती हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकते। अनामिका के इस पूरे भाषण पर झलक ने कोई जवाब नहीं दिया। जल्दी ही नाश्ते के बाद वो फटाफट वहां से निकल पड़े। गाजर का हलवा साथ लेकर अब वो दोनों एक फेमस मॉल की ओर रवाना हो चुके थे। हालांकि अनामिका के साथ साथ झलक ने भी एक बार फिर अपने लिए फॉर्मल कपड़े चुने थे। उसने अपने बालों को अच्छी तरह से एक बड़े से जुड़े में बांध रखा था और सिर पर एक हैट पहनी हुई थी ताकि उसे कोई पहचान ना सके। बेहद सिंपल से वेश में थी लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा स्टनिंग लग रही थी। अब फटाफट से झलक अनामिका के साथ गाड़ी में बैठ चुकी थी और खुद ही ड्राइव कर रही थी। पीछे इस वक्त दादाजी ने इशारे से अपने कुछ भरोसेमंद आदमियों को उनके पीछे भेज दिया था। हालांकि झलक ये बात अच्छी तरह जानती थी कि दादाजी के गार्ड्स उन्हें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसने अनामिका को ये बात बताना जरूरी नहीं समझा। उसे लग रहा था कि अगर अनामिका को पता चल गया तो वो एक बार फिर बहस करने लगेगी। सेफ्टी के लिए अगर दादाजी ने लोग भेजे हैं तो झलक को इसमें कोई एतराज नहीं था। अब झलक को आराम से गाड़ी चलाते देखकर अनामिका उसे टोकते हुए बोली, यार झलक ये क्या कर रही हो? वैसे भी हम लोग देर से उठे हैं, ऑलरेडी दोपहर के 12 बजने वाले हैं, और अगर तुम इसी चाल से गाड़ी चलाओगी तो हम लोग कब पहुंचेंगे? थोड़ा तेज चलाओ ना प्लीज। ये सुनकर देर न करते हुए झलक ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी, लेकिन तभी एक ओवरटेक करने की कोशिश करती हुई गाड़ी अचानक से झलक की गाड़ी से छू गई थी, जिसकी वजह से झलक की गाड़ी पर स्क्रैच आ गए थे। साथ ही सामने वाली महंगी गाड़ी पर भी स्क्रैचेस आ गए थे।
ये देखकर उन्होंने तुरंत गाड़ी रोक दी थी। गाड़ी रुकते ही सामने वाली गाड़ी का ड्राइवर फटाफट बाहर निकला और झलक की तरफ घूरते हुए बदतमीजी से बोला, अंधी हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता? जब हम तुम्हारी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे थे तब तुम्हें क्या जरूरत थी गाड़ी की स्पीड बढ़ाने की? दरअसल झलक धीरे धीरे गाड़ी चला रही थी, जिससे पीछे वाले ड्राइवर और गाड़ी में बैठे लोगों को परेशानी हो रही थी। उन्हें लगा कि गाड़ी स्लो चल रही है तो थोड़ा आगे निकलकर इसे ओवरटेक कर लिया जाए और फिर अपनी गाड़ी तेज चला ली जाए। लेकिन जिस वक्त उन्होंने ओवरटेक करने की कोशिश की, उसी वक्त अनामिका के कहने पर झलक ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से ओवरटेक कर रही गाड़ी और झलक की गाड़ी आपस में टकरा गई थीं। अब ड्राइवर की बदतमीजी भरी बात सुनकर झलक को भी थोड़ा गुस्सा आया था, लेकिन क्योंकि गलती उसी की थी, उसे पता था कि उसे अचानक से स्पीड नहीं बढ़ानी चाहिए थी।